अगले महीने भारत में होने जा रहे भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 72 साल के रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। रामनाथ कोविंद अभी बिहार राज्य के राज्यपाल हैं। श्री कोविंद के नाम की घोषणा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले रामनाथ कोविंद दलित समाज से आते हैं। श्री कोविंद को वकालत का भी लंबा अनुभव है। वे सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में लगभग 16 साल तक वकालत कर चुके हैं। रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से दो बार 1994 से 2000 और 2000 से 2006 के दौरान राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा श्री रामनाथ कोविंद 1998 से 2002 तक बीजेपी के दलित मोर्चा के प्रेसिडेंट भी रहे और अब बीजेपी और एनडीए को उम्मीद है कि अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े होने के कारण श्री कोविंद के नाम पर वो कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों को सहमति के लिए राजी कर पाएंगे। इस पूरी राजनीति और इस नाम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन सर, SBS रेडियो हिंदी पर आपका स्वागत है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया
सर। पिछले कई दिनों से कई नाम सुने जा रहे थे भारत के राष्ट्रपति पद के लिए, वो सब नामों को पीछे छोड़कर रामनाथ कोविंद जी का चयन होना क्या बताता है और इसके पीछे की राजनीति क्या है?
देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये कि ये फिर से मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को और मजबूत करता है, जहां पर किसी भी उनके फैसले, यानी अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई फैसला ले रहे होते हैं तो उस फैसले का अनुमान लगाना ये बहुत मुश्किल है। ये आज की एक बड़ी राजनीतिक शर्त हो गई है, कम से कम जो राजनीतिक पत्रकार हैं उनके लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी के बारे में। तो एक तो सबसे बड़ी वजह यही रही। दूसरी जो बड़ी वजह थी कि रामनाथ कोविंद का पूरा, अगर हम उनकी पृष्ठभूमि को देखें तो ठीक है, ढेर सारी चीजों के अलावा एक जो बहुत बड़ी चीज है जिसकी चर्चा कम होती है कि रामनाथ कोविंद दलित समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कानपुर से हैं, लेकिन उनकी एक बड़ी चीज है कि ये शायद पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से मतलब देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठने जा रहे हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनी हैं, वो भी उस वक्त जब नरेंद्र मोदी एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री बना हुआ है, गैर स्वयंसेवक व्यक्ति का पहली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतने ऊंचे पद के लिए भेजा जाना, एक उसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो बार बार ये कहा जाता है कि जो मूल रूप से स्वयंसेवक नहीं है उसको संघ पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हैं और इतने अहम पदों पर रहीं, उसके बावजूद उनके बारे में भी यही कहा जाता रहा। तो ये दूसरी ये धारणा ध्वस्त हुई। तीसरी जो बड़ी चीज है कि चूंकि देश में एक लगातार एक मोमेंटम बनी थी और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर साउथ के कई राज्यों में और उन सबको मिलाकर जोड़कर एक दलित मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश हो रही थी और उस कोशिश को ध्वस्त करने की बात होगी, क्योंकि अब अगर रायसीना पहाड़ी पर एक दलित बैठा और वो दलित पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के एक उनकी इच्छा से और उस समय की इच्छा से जब उनके पास ढेर सारे विकल्प थे, और जाहिर है कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन राव भागवत की भी पूर्ण सहमति होगी, तो कुल मिलाकर जो हिंदू एकता की बात कहते हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी हिंदू एकता की बात करती है, तो उस तरफ एक मजबूत बुनियाद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश है और शायद यही वजह है कि रामनाथ कोविंद सबसे आगे निकल गए।
अगर विपक्ष की राजनीति की बात करें तो अब विपक्ष के पास कांग्रेस सहित दूसरे जो दल हैं जो भाजपा का उम्मीदवार नहीं चाहते थे, उनके पास क्या विकल्प है?
देखिए, सबसे पहले तो अब अगर विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष तो शायद बहुत अब बचा नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ रामनाथ कोविंद का, तो चूंकि बिहार के ही राज्यपाल हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्टसी मीट में गए और उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो ये सबसे प्रसन्नता की बात है, समर्थन करना वोट देना वो आगे की बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि रामनाथ कोविंद जी अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं या उसके चुनाव में हैं। दूसरा, जो आंध्र प्रदेश बटकर आंध्र प्रदेश तेलंगाना हुआ, तो नायडू साहब तो पहले से ही एनडीए के हैं, टीआरएस जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, के चंद्रशेखर राव ने भी समर्थन दे दिया, शिवसेना भी लगभग समर्थन देने की स्थिति में है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव भी समर्थन करेंगे। सबसे चौंकाने वाली बात रही जो प्रतिभा पाटिल को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने शिवसेना के साथ किया था, वही काम भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद को बनाकर मायावती के साथ कर दिया है। मायावती का यह बयान था कि एक दलित समाज से आते हैं कोविंद जी और हम उनको समर्थन कर सकते हैं, अगर इससे बेहतर प्रत्याशी विपक्ष ले आता है तो हम सोचेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष कहीं बचा नहीं। AIDMK के जयललिता के निधन के बाद तीन धड़े हुए और तीन में से दो धड़े समर्थन कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर विपक्ष जैसा कुछ नहीं। हाँ, कांग्रेस और वामपंथ, इन दोनों को सोचना है, क्योंकि कांग्रेस का अभी कोई तगड़ा रिएक्शन नहीं आया, जबकि खुद प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी से बात की है, मनमोहन सिंह से बात की है। सीताराम येचुरी का बयान है
जी
कि अभी तक कभी एक बार को छोड़कर कभी निर्विरोध नहीं हुआ है, तो शायद वो कुछ कोशिश करेंगे कि एक विपक्ष के तौर पर वो खड़े रहें। और मुझे लगता है कि उनके पास बहुत चॉइस नहीं है। मीरा कुमार का नाम एक कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गांधी की बात थी तो वो लगभग मना कर चुके हैं जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि वो बहुत उत्सुक नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें हैं तो उसमें लगता नहीं है कि रामनाथ कोविंद के मुकाबले विपक्ष के पास कोई ठोस रणनीति है।
आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी खुद ये बात कह चुके हैं कि जाति व्यवस्था जो है उसको तोड़ना चाहिए और समाज में भी ऐसी बात चलती है, तो क्या भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन दलित होना हो गई है?
नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। इस नजरिए से देखना, दलित होना लिए भी जरूरी था क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, क्योंकि जब भी एक तरह से देखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो इनके ऊपर सारे समीकरणों को साधने का, इनके ऊपर जो सांप्रदायिक सामाजिक सौहार्द का ताना बाना है उसको बनाकर रखने का और इस तरह की ढेर सारी चीजें होती हैं कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि ये सवाल कांग्रेस या दूसरी सरकारों से नहीं पूछे जाते हैं, उस वक्त दूसरी तरह के सवाल खड़े होते हैं। रामनाथ कोविंद की पहचान एक बहुत ही ठीक है, हम्बल बैकग्राउंड से आना अलग चीज है, वो उनकी जो पहचान रही है वो मोरारजी देसाई के साथ काम करने की रही है और वो अच्छे वकीलों में गिने जाते हैं, मतलब करीब डेढ़ दशक से ज्यादा का उनका अनुभव है और खुद वो जो जिस तरह से वो आगे बढ़े उसमें ऐसा नहीं है कि अचानक कहीं से उठाकर किसी को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया गया है, वो बाकायदा एक पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल ग्रोइंग के साथ बढ़ते हुए आगे आए हैं और वो राजनीतिक समीकरण हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस पैमाने पर बहुत लोग थे और उसमें कई और दूसरे एक तरह से कहें क्वालिटीज की वजह से रामनाथ कोविंद आगे निकल गए।
हर्षवर्धन जी, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया।